आज है 9 जून दिन रविवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। मालदीव के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका जाएंगे।
श्रीलंका में जिस तरह के चरमपंथी हमले हुए हैं और उनकी जो ट्रेल निकल कर आ रही है उसको लेकर भारत खासा चिंतित है।
राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह कब थमेंगे?
कोई हाई कमांड है नहीं आज के तारीख में कांग्रेस में। उनके प्रेसिडेंट ने तो कह दिया कि मैं इस्तीफा देके अपने आप को अलग करना चाहता हूँ डे टू डे पॉलिटिक्स से। मदर तो पहले ही अध्यक्ष नहीं है।
पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राजनीतिक हिंसा। क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया होंगे आमने सामने।
We played really good cricket in Australia, they played really good cricket in India, so it's going to be...
सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिनेश उप्रेती से। अपने पहले विदेशी दौरे पर मालदीव पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव की संसद मजलिस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए विश्व समुदाय का एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद हमारे समय के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और यह मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलेह के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। इसके बाद जारी संयुक्त बयान में हिंद महासागर क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई गई। ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो यूरोपीय यूनियन से अलग होने का मुआवजा देने से इनकार कर देंगे। टेरिजा मे के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा के बाद जॉनसन को प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है। संडे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लगभग 50 अरब डॉलर की ये राशि वो तब तक नहीं देंगे जब तक कि यूरोपीय यूनियन अपनी शर्तों में बदलाव नहीं करता। रूस में एक खोजी पत्रकार इवान गोलुनोव को मॉस्को में गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ अवैध तरीके से ड्रग्स बेचने के आरोप हैं। अदालत में सुनवाई के बाद उन्हें नज़रबंद रखा गया है। लातविया स्थित न्यूज साइट मेदुजा के पत्रकार गोलुनोव को गुरुवार को हिरासत में लिया गया था। गोलुनोव के समर्थकों का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल करने के कारण ही सरकार ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। मेदुजा के एडिटर इन चीफ इवान कोल्पाकोव ने गोलुनोव की गिरफ्तारी को दूसरे पत्रकारों के लिए चेतावनी बताया है। उन्होंने कहा,
It's dangerous to be a journalist in Russia, for sure. But, drug stories...
रूस में पत्रकार होना खतरनाक है, लेकिन रूसी पत्रकारों को ड्रग्स के मामलों में फंसाने के मामले पहले कम ही सुनने को मिलते थे। मैं कहूंगा कि ये रूस की पूरी मीडिया इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी है। रूस के पत्रकार, संपादक और दूसरे लोग इसे मीडिया इंडस्ट्री पर हमले के रूप में देखते हैं। बहुत हो गया, ये बहुत ही क्रूरतापूर्ण कार्रवाई है। ये थे मेदुजा के एडिटर इन चीफ कोल्पाकोव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अल्बानिया के राष्ट्रपति ने इस महीने के आखिर में होने वाले स्थानीय चुनावों को रद्द कर दिया है। देशभर में सड़कों पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद ये फैसला लिया गया है। कल भी राजधानी तिराना में प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसके बाद राष्ट्रपति इलिर मेटा ने कहा कि हालात बेहद नाजुक हैं और ऐसे में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है। फ्रांसीसी सरकार का कहना है कि वह कार निर्माता कंपनी रेनो में अपनी हिस्सेदारी घटाने की तैयारी कर रही है। अभी रेनो में सरकार का 15% हिस्सा है। जापानी कंपनी निशान के साथ सहयोग की खबरों के बीच फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायरी ने कहा,
Nous pouvons réduire la part de l'État dans le capital, ça ne pousse
हम रेनो में अपनी हिस्सेदारी घटा सकते हैं। अगर निशान के साथ विलय की प्रक्रिया होती है तो ये कोई समस्या नहीं है। इसके बाद हमारे पास दो बड़े कार निर्माताओं का गठबंधन होगा, निशान और रेनो। ये थे फ्रांस के वित्त मंत्री ले मायरी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सूडान में विपक्षी दलों ने लोगों से देशभर में प्रदर्शन का आह्वान किया है। विपक्षी दलों ने लोगों से अपील की है कि वे सरकारी आदेशों की अवमानना कर सड़कों पर निकलें और प्रदर्शन तब तक जारी रखें जब तक कि सूडान में नागरिक सरकार बहाल नहीं हो जाती। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के पहले विदेशी दौरे के तहत कल मालदीव पहुंचे। मालदीव में मोदी का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें वहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भी किया गया। भारत और मालदीव के बीच कई समझौतों पर दस्तखत हुए। कई द्वीपों के समूहों से मिलकर बना मालदीव भारत के लिए खासा महत्व रखता है। और क्या कुछ हुआ कल मोदी के मालदीव दौरे पर, बता रहे हैं नवीन नेगी अपनी इस रिपोर्ट में।
लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए मालदीव पहुंचे। मोदी की इस यात्रा को भारत के पड़ोसी देशों के महत्व और नेबरहुड फर्स्ट नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब मालदीव की राजधानी माले पहुंचे तो रिपब्लिक स्क्वायर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहां उनके स्वागत के लिए मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह मौजूद थे। मालदीव के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक बैठक हुई। दोनों देशों के बीच कई परियोजनाओं के लिए समझौते भी हुए, जिसमें मालदीव के विभिन्न द्वीपों पर पानी और सफाई व्यवस्था, बंदरगाहों का विकास, छात्रों के लिए फेरी सेवा आदि महत्वपूर्ण हैं।
हमने आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ हमारी द्विपक्षीय सहयोग की विस्तार से समीक्षा की है। हमारी साझेदारी की भावी दिशा पर हमारे बीच पूर्ण सहमति है।
प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव में विदेशियों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान निशान इज्जुद्दीन से नवाजा गया। मोदी ने मालदीव की संसद को भी संबोधित किया और वहां चरमपंथ के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि चरमपंथ के मुद्दे पर वैश्विक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए।
अध्यक्ष महोदय, आतंकवाद हमारे समय की एक बड़ी चुनौती है। ये खतरा एक देश या एक क्षेत्र के लिए नहीं, ये खतरा पूरी मानवता के लिए है। जिस प्रकार विश्व समुदाय ने क्लाइमेट चेंज के खतरे पर सक्रिय रूप से विश्वव्यापी कन्वेंशन और सम्मेलन किए हैं, वैसे आतंकवाद के विषय में क्यों नहीं हो रह सकता। मैं विश्व संगठनों और सभी प्रमुख देशों से अपेक्षा करूंगा कि एक समय सीमा के भीतर आतंकवाद पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आयोजित करें।
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति सोलह को भारतीय क्रिकेट टीम के हस्ताक्षरों वाला बल्ला उपहार में दिया। उन्होंने मालदीव में क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में भारत की ओर से मदद का भरोसा भी दिलाया। भारत के लिए मालदीव एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। पिछले कई सालों से मालदीव का भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में इब्राहिम मोहम्मद सोलह को अभूतपूर्व जीत हासिल हुई और तब भारत के प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया। इसके बाद राष्ट्रपति सोलह ने भारत का दौरा किया, जिस दौरान कई अहम मुद्दों पर समझौते हुए। बताया जाता है कि अब तक भारत ने मालदीव को करीब $1.5 अरब की वित्तीय मदद की है और इसे मालदीव पर चीन के असर को काउंटर करने की भी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। मालदीव पर चीन का $3 अरब का कर्ज है।
रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन नेगी। मालदीव और भारत के बीच किन किन मुद्दों पर समझौते हुए और मालदीव के बाद भारतीय प्रधानमंत्री का अगला पड़ाव श्रीलंका कितना महत्वपूर्ण है, इस बारे में हमारे सहयोगी नवीन नेगी ने मालदीव में मौजूद बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव से बात की।
भारत मालदीव के बीच में जो कोस्टल सर्वेलेंस की बात है, इसके बारे में कई लंबे समय से बात होती आ रही है कि कोस्टल सर्वेलेंस साथ करेंगे और साझा करेंगे जो जानकारी और इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस होती है, उस पर आखिरकार एक बड़ा समझौता हुआ है जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है, क्योंकि भारत की जो नेवी है वो यहाँ पर स्टेशन होके इस काम को मालदीव की नेवी के साथ करेगी। साथ ही जो डिजिटल पेमेंट की बात कही है, वो रुपए जो कार्ड का है उसका, वो यहाँ पर मालदीव में अब इनिशिएट होगा। और जाहिर है कि इस बारे में बात हो रही थी कि भारत से यहाँ पर लोगों की आवाजाही को बढ़ाया जाएगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि टेररिज्म के मामले पर इंडिया और मालदीव अब इस बात पर अग्री कर रहे हैं कि हाल में मालदीव का पड़ोसी बहुत ज्यादा दूर नहीं है श्रीलंका, जहां पर जिस तरह के चरमपंथी हमले हुए थे, उसके बाद भारत को इस बात का एहसास है चरमपंथ जो है वो इस पूरे इलाके में उसके लिए भी खतरनाक हो सकता है। और शायद यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जितने भी इंगेजमेंट कर रहे थे, हम उन सारे इंगेजमेंट में मौजूद थे, उनके ठीक पास में मौजूद थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिनको अब कैबिनेट रैंक का दर्जा दे दिया गया है, अजीत डोवाल। यानी जो भारत की साउथ एशिया पॉलिसी है, खासतौर से श्रीलंका और मालदीव में पिछले कुछ सालों से जब से यहाँ पर फेवरेबल गवर्नमेंट आई है, पिछली सरकारें फेवरेबल नहीं थी दोनों ही देशों में, उसमें अजीत डोवाल का काफी रोल बताया जाता रहा है और उनकी मौजूदगी यहाँ पर इस बात का एक स्टैम्प है कि असली जो मुद्दा है भारत के लिए, चाहे वो मालदीव हो चाहे श्रीलंका हो, वो इंटेलिजेंस है और टेररिज्म है।
अब आज प्रधानमंत्री मोदी का क्या कार्यक्रम है? वे श्रीलंका जाने वाले हैं और श्रीलंका ईस्टर हमले के बाद पहले ऐसे नेता हैं, पहले अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं जो श्रीलंका का दौरा करेंगे। कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा?
कुरुम्बा रिजॉर्ट में जहाँ पर इंडियन इंतजार रुका है, वहाँ पर एक रिसेप्शन होस्ट किया गया जिसमें मालदीव प्रेसिडेंट मौजूद थे और उनकी तरफ से रिसेप्शन था और उसमें तमाम हाई रैंकिंग ऑफिशियल से जो बात कर रहे थे पूरी एरिया की सिक्योरिटी की। लेकिन इस जो पहली यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की, उसकी अगली कड़ी श्रीलंका है जो मालदीव के बराबर ही अहम है। दो बातें हैं। पहली बात यह है कि मालदीव की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो ये है कि गल्फ से जो तेल आता है मिडिल ईस्ट से, वो इसके जरिए होके आता है। श्रीलंका के साथ लेकर भारत को दो चिंताएं हैं। पहली चिंता ये है कि श्रीलंका में पीस और स्टेबिलिटी के बारे में लगातार भारत कहता रहा है कि वहां पर जो है इंटरनल जो 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 कॉन्फ्लिक्ट है वो ना बढ़े, जो कि ईस्टर बॉम्बिंग हुई उसके बाद से फॉलोआउट में। दूसरी बात ये है कि जो जिस तरह के चरमपंथी हमले हुए हैं और उनकी जो ट्रेल निकल कर आ रही है उसको लेकर भारत खासा चिंतित है, क्योंकि उस तरह के मामले भारत में भी उतने गंभीर नहीं लेकिन एक आधा देखने को सुनने को मिले जरूर।
ये थे बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने एक ही दिन केरल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना की। राहुल ने जहां एक तरफ बीजेपी पर असहिष्णुता फैलाने का आरोप लगाया, तो वहीं केरल में एक भी सीट नहीं जीतने के बावजूद मोदी के दौरे ने कई लोगों को हैरान कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के केरल दौरे पर सुनिए रिपोर्ट इमरान कुरैशी की जुबानी।
कांग्रेस और बीजेपी के दो बड़े नेताओं का चुनावों के बाद केरला में एक ही दिन रहना थोड़ा अजीब सा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने वायनाड क्षेत्र के मतदाताओं को शुक्रिया अदा करने गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवायूर मंदिर प्रार्थना करने गए थे। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद भी वो इसी मंदिर में प्रार्थना करने गए थे। वायनाड में राहुल गांधी ने मतदाताओं से कहा कि वो वायनाड की समस्याएं लोकसभा में उठाएंगे, तो मोदी ने कहा कि उन्होंने देश के सभी देशवासियों के लिए गुरुवायूर मंदिर में प्रार्थना की। पहले सुनिए राहुल गांधी ने अपने रोड शो में क्या कहा।
मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, ही हैज ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री अंडर हिज कंट्रोल।
हम राष्ट्रीय स्तर पर जहर से मुकाबला कर रहे हैं, मोदी जी जहर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, मैंने थी का शब्द उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन मोदी जी ने दुश्मनी का जहर देश में फैलाया था देश को बांटने के लिए। वो झूठ कहकर चुनाव जीते हैं। ये थे राहुल गांधी के शब्द। राहुल गांधी के हर वाक्या के बाद वहां मौजूद जनता खूब तालियां बजा रही थी। सारे वायनाड में एक उत्साह का माहौल बना था और लोग हर जगह हजारों की तादाद में उनको सुनने के लिए आए थे। इन लोगों ने बारिश की परवाह भी नहीं की, हर जगह उनका स्वागत हम आपके साथ हैं और हमें आप चाहिए के पोस्टरों से हुआ। राहुल गांधी अपना तीन दिन का धन्यवाद प्रधान दौरा आज खत्म करने वाले हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवायूर मंदिर में प्रार्थना करने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया और कहा,
कई पंडितों को मन में विचार आता होगा केरल में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला और फिर भी मोदी वहां जाकर के धन्यवाद करने पहुंच गया, ये मोदी की सोच क्या है, कई लोगों के दिमाग में रहता होगा। लेकिन हमारे संस्कार है, हमारी सोच है और हम इस मत के हैं कि लोकतंत्र में चुनाव अपनी जगह पे है, लेकिन चुनाव के बाद जीत करके आने वाली सविशेष जिम्मेवारी होती है 130 करोड़ नागरिकों की। जो हमें जिताते हैं वो भी हमारे हैं, जो इस बार हमें जिताने में चूक गए हैं वे भी हमारे हैं। केरल भी मेरा उतना ही है जितना मेरा बनारस है।
चुनाव अभियान के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि वो वायनाड से इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार में दक्षिण भारत के लोगों और समस्याओं के प्रति अपनापन नहीं था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी की यह बात बहुत ठीकी लगी और वो चुनाव जीतने के बाद केरला पहुंच गए। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक जोस कारिया ने कहा, चुनाव के बाद मोदी बिल्कुल एक विजेता की तरह बात कर रहे हैं। वो सचमुच देश के प्रधानमंत्री जैसे बात कर रहे हैं जो हम उनके पहले 5 साल में नहीं देखा था। मतलब वो एक बीजेपी के प्रधानमंत्री जैसे बात करते आ रहे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ नई बात नहीं की है, वो फिर से वही पुरानी बात कर रहे हैं। ये थे जोस कारिया के शब्द। अगर केरला की ही बात करें तो जोस कारिया का मानना है कि बीजेपी ने केरला में 16% वोट लेकर अपनी जगह बना लिया है। अब से ये स्पष्ट हो गया है कि केरला में त्रिकोणीय चुनाव होगा। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में 20 में से 19 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
तेलंगाना से लेकर पंजाब और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंतरिक कलह से जुड़े विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। केंद्र के बाद अब राज्यों में भी कांग्रेस की बढ़ती अंदरूनी कलह पर सुनिए बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबे की ये रिपोर्ट।
देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के तौर पर पहचानी जाने वाली कांग्रेस का पराभव काल लोकसभा चुनावों में पार्टी की करारी हार के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम चुनावों में तेलंगाना की 17 में से 3 सीटों पर कब्जा करने वाली कांग्रेस को गुरुवार शाम तब बड़ा झटका लगा जब पार्टी के 12 विधायकों ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति में शामिल होकर कांग्रेस से पल्ला झाड़ लिया। पंजाब कैबिनेट में हुए फेरबदल के बीच अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच का विवाद भी सबके सामने आ गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर बेल्ट में हावी ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के समर्थकों ने भी अपने ही मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच बयानबाजी के कारण दो गुट साफ दिखने लगे हैं। इस विषय पर राजनीतिक विश्लेषक राधिका रामाशिशन कहती हैं कि अब कांग्रेस में कोई हाई कमांड नहीं बची है।
जो वाक्य हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं हाई कमांड, इसका हमें उपयोग करना बंद करना होगा। कोई हाई कमांड है नहीं आज के तारीख में कांग्रेस में। उनके प्रेसिडेंट ने तो कह दिया कि मैं इस्तीफा देके अपने आप को अलग करना चाहता हूँ डे टू डे पॉलिटिक्स से। मदर तो पहले ही अध्यक्ष नहीं है, खैर उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी का कमांड तो कम से कम संभल लिया। तो कोई सेंट्रल कमांड है नहीं, और जब सेंट्रल कमांड नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है जिसकी ओर लोग देखें आदेश के लिए, डायरेक्शन के लिए, एक आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन के लिए, तो क्या करेंगे।
केंद्र से राज्यों की ओर बढ़ते कांग्रेस पार्टी के इस बिखराव के बारे में बात करते हुए वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई कहते हैं कि वर्तमान स्थिति से उबरने के लिए कांग्रेस को अपनी ऑस्ट्रिच अप्रोच से बाहर आना होगा।
सोनिया गांधी के पास समस्या ये है कि अगर वो राहुल गांधी को मनोनीत करती हैं तो राहुल गांधी को पूरा लीडरशिप संभालनी होगी जो संसदीय दल की होती है, और अगर नहीं तो शशि थरूर जो है वो बहुत आतुर है, वो बनना चाहते हैं, मनीष तिवारी हैं, कई लोग ऐसे हैं, लेकिन वो फिर कांग्रेस के जो नेहरू गांधी परिवार है उसके हाथ से लीडरशिप निकल जाएगी, तो वो एक बड़ा एक पेचीदा मसला है। दूसरा संगठन का है, संगठन में हर जगह बुरा हाल है। मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थक जो है वो उन्होंने कमलनाथ के खिलाफ बगावत कर दी है। इनकम टैक्स रेट की रोज अखबारों में और टेलीविजन में डिटेल आ रही है, जिस और बिजली की बहुत बड़ी समस्या है जिसका कोई कमलनाथ सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। राजस्थान में बिल्कुल खुला एक तरीके का चैलेंज है जहां मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री हैं खुलेआम एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। दरअसल बात वहां एक अशोक गहलोत के बेटे के हारने की नहीं है। वहां इतना बुरा कांग्रेस का प्रदर्शन रहा कि 22 जगहों पर लोकसभा में कांग्रेस 2 लाख या उससे ज्यादा वोटों से हारी है, तो ये कोई एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं था। तेलंगाना में 18 में से 12 MLA जो है तेलंगाना पार्टी में जा चुके, लेकिन कर्नाटक में भी बहुत बुरा हाल है, केरल में, पंजाब में, तमाम राज्यों में कांग्रेस जो है बिल्कुल बिखराव है और अर्धनय की स्थिति बनी हुई है।
अब देखना यह है कि कांग्रेस खुद को पतन की इस गर्त से निकालकर भारतीय राजनीति को एक मजबूत विपक्ष दे पाती है या नहीं। प्रियंका दुबे, बीबीसी दिल्ली।
पश्चिम बंगाल से एक बार फिर राजनीतिक हिंसा की खबरें आ रही हैं। ताजा मामले में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों में कम से कम 3 लोगों के मारे जाने का समाचार मिल रहा है। इस खबर पर और जानकारी के लिए मैंने कोलकाता में मौजूद बीबीसी संवाददाता अमिताभ भट्टाशाली से बात की।
देखिए, ये उत्तर 24 परगना जिले की संदेशखाली जो एक द्वीप है सुंदरबन इलाके के अंदर, वहां से ये खबरें आ रही हैं कि 3 लोगों को वहां मार दिया गया है और ये 3 लाश बरामद हुई है बसीरहाट के सरकारी अस्पताल में। बीजेपी दावा कर रही है कि उनके और भी 4 स्थानीय कार्यकर्ता लापता है और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की भी दावा है कि उनके भी 1 स्थानीय कार्यकर्ता मारे गए हैं। पर औपचारिक तौर पे ये कहा जा सकता है कि आज शाम को 3 लोग मारे गए हैं और ये जो पिछले 2 हफ्ते से जो लगातार राजनीतिक हिंसा चल रही है पश्चिम बंगाल के, पूरी पश्चिम बंगाल में ही कहीं तृणमूल कांग्रेस की पार्टी ऑफिस बीजेपी कब्जा कर ले रही है और दूसरी तरफ हिंसा भी फैल रही है, तो ये एक लग रहा है कि एक बहुत मतलब कि हिंसक दिशा पे जा रही है ये दिख रहा है।
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें आ रही हैं, ये हिंसा बढ़ती क्यों जा रही है, इसकी क्या वजह देखते हैं आप?
देखिए, इसका एक वजह तो ये है कि अचानक से जिस तरह से बीजेपी 18 सीट पश्चिम बंगाल से छीन ली है तृणमूल कांग्रेस से, तो ये स्वाभाविक है कि तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय स्तर के लोग और मध्यम वर्गीय के नेता ये इनसे खफा होंगे ही, तो इसलिए स्थानीय स्तर पे ही मतलब कि ये टकराव और हिंसा जो है ये चल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये वार्ता देने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं कोई टकराव ना हो, कहीं कोई हिंसा ना हो, पर ये आज भी ये कई दिनों से हो रहा है, आज भी हुआ है कई जगह में पश्चिम बंगाल की जहां बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच झड़प हुई है, हिंसक घटना हुई है, पथराव की घटना भी दिनाजपुर के इलाके में सामने आया है जहां पुलिस कर्मी भी घायल हुई है। तो ये अब लग रहा है कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक आमने सामने होते हुए दिख रहा है जहां से लोकसभा चुनाव की परिणाम सामने आया है।
पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राजनीतिक हिंसा, जानकारी दे रहे थे कोलकाता से अमिताभ भट्टाशाली। आज रविवार है और हर रविवार हम लेकर आते हैं आपके लिए पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा। आलेख इकबाल अहमद का है, सुनिए मोहम्मद शाहिद की जुबानी।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई, OIC सम्मेलन, सैन्य खर्च में कटौती आदि से जुड़ी खबरें सुर्खियों में रहीं। लेकिन सबसे पहले बात इमरान खान के खत की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है। अखबार नवाए वक्त के अनुसार इमरान खान ने मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीर समेत भारत के साथ सभी मामलों पर बातचीत करना चाहता है। इमरान खान ने कहा कि बातचीत करके ही दोनों देशों से गरीबी दूर की जा सकती है। अखबार जंग के अनुसार इमरान खान ने मोदी को खत लिखकर भारत पाकिस्तान के बीच वार्ता शुरू करने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन भारत ने साफ कहा है कि फिलहाल इमरान और मोदी की मुलाकात या भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। अखबार के अनुसार पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी अपने भारतीय समकक्ष S जयशंकर को खत लिखकर बातचीत की ख्वाहिश जाहिर की है। पाकिस्तानी सेना ने अपने खर्च में कटौती की घोषणा की है। इमरान खान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि पाकिस्तानी सेना ने अपनी मर्जी से इस साल अपने रक्षा बजट में कटौती की घोषणा की है। अखबार दुनिया ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल जावेद कमर बाजवा के हवाले से कहा है कि खर्च में कटौती के फैसले से सैन्य क्षमता में कोई कमी नहीं आएगी। वहीं अखबार नवाए वक्त ने लिखा है कि सेना प्रमुख ने ईद सीमा पर तैनात जवानों के साथ मनाई। अखबार के अनुसार इस मौके पर सेना प्रमुख ने कहा कि खर्च में कटौती का फैसला कर सेना ने कोई एहसान नहीं किया है। उनके अनुसार हर तरह के हालात में सेना देश के साथ खड़ी है। और अब बात बढ़ती महंगाई की। पाकिस्तान में महंगाई हर रोज बढ़ती जा रही है और इस पर काबू पाने के कोई आसार भी नहीं दिख रहे हैं। अखबार दुनिया के अनुसार विपक्षी पार्टी मुस्लिम लीग नवाज गुट ने कहा है कि महंगाई के खिलाफ वो लोग सड़कों पर होंगे और इसके नतीजे में अगर सरकार गिरानी हुई तो उसे भी गिरा देंगे। पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस सरकार के दौरान महंगाई में 92% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार का दावा था कि सरकारी खर्च में कटौती की जा रही है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि भैंसे और गाड़ियां बेचने से सरकारी खर्च में कटौती नहीं होती है। अब बात मक्का में आयोजित इस्लामी देशों के समूह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज यानी OIC के मुखियाओं की 14वीं इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की। OIC की बैठक को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि भारत प्रशासित कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी के जायज संघर्ष को दहशतगर्दी नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान के सारे अखबारों ने इमरान खान की स्पीच को पहले पन्ने पर जगह दी और कई अखबारों ने तो इमरान खान की पूरी तकरीर को ही छाप दिया। अखबार एक्सप्रेस के अनुसार इमरान खान का कहना था कि 9/11 के बाद कश्मीर और फलस्तीन की जायज जद्दोजहद को इस्लामी अतिवाद और दहशतगर्दी से जोड़ दिया गया, हालांकि 9/11 से पहले 80% से ज्यादा आत्मघाती हमले गैर मुस्लिम चरमपंथी करते थे।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की साप्ताहिक समीक्षा के बाद अब बारी है खेल समाचारों की।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। इंग्लैंड में खेले जा रहे ICC विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल 2 मैच खेले गए और दोनों ही मैचों के परिणाम उम्मीदों के अनुरूप रहे। कल खेले गए पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 106 रन से और दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। कल बांग्लादेश ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को बल्लेबाजी की दावत दी और आफत भी तब मोल ले ली जब गेंदबाजी करने का फैसला किया। जवाब में इंग्लैंड ने सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय के 153, जॉस बटलर के 64 और जॉनी बेयरस्टो के 51 रन की मदद से निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 386 रनों जैसा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो ने पहले विकेट के लिए 128 रन जोड़े। बांग्लादेश के मोहम्मद सैफुद्दीन ने 78 रन देकर 2 और मेहदी हसन ने 67 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इसके बाद जीत के लिए 387 रनों की तलाश में बांग्लादेश की टीम 48.5 ओवर में 280 रनों पर सिमट गई। वो तो बांग्लादेश के शाकिब अल हसन ने 121 रनों की शतकीय पारी खेली, वरना तो उनके अलावा मुशफिकुर रहीम ही थोड़ा बहुत जमकर खेलते हुए 44 रन बना सके। इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर ने 29 रन देकर 3 और बेन स्टोक्स ने भी 23 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। कल ही खेले गए दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 173 रनों का लक्ष्य था, जो उसने कप्तान केन विलियमसन के नाबाद 79 और बेहद अनुभवी रॉस टेलर के 48 रन की मदद से 32.1 ओवर में ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने के बाद पूरी अफगानी टीम 41.1 ओवर में ही 172 रन पर ढेर हो गई। अफगानिस्तान के हशमतुल्ला शाहिदी ने 59, हजरतुल्ला जजाई ने 34 और नूर अली जारदान ने 31 रन बनाए। ये न्यूजीलैंड की लगातार तीसरी जीत रही। आज विश्व कप में 2 बार के चैंपियन भारत का सामना 5 बार के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच से पहले कल भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कहा कि दोनों देशों ने पहले भी एक दूसरे के खिलाफ शानदार क्रिकेट खेली है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विशेष मैदान का रिकॉर्ड क्या कहता है।
We played really good cricket in Australia. They played really good cricket in India. So it's going to be a great contest.
उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का फाइनल आज दूसरी वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल और चौथी वरीयता हासिल ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम के बीच खेला जाएगा, जबकि महिला एकल वर्ग का फाइनल कल ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टी ने चेक गणराज्य की मार्केटा बोद्रोसोवा को 6-1, 6-3 से हराकर अपने नाम किया।
और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सुनते हैं दिनेश उप्रेती से।
BBC समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव दौरे के बाद आज श्रीलंका जाएंगे। ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो यूरोपीय यूनियन से अलग होने का मुआवजा देने से इनकार कर देंगे। रूस में एक खोजी पत्रकार इवान गोलुनोव को मॉस्को में गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ अवैध तरीके से ड्रग बेचने के आरोप हैं। अल्बानिया के राष्ट्रपति ने इस महीने के आखिर में होने वाले स्थानीय चुनावों को रद्द कर दिया है। देशभर में सड़कों पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद ये फैसला लिया गया है। फ्रांसीसी सरकार ने कहा है कि वो कार निर्माता कंपनी रेनो में अपनी हिस्सेदारी घटाने की तैयारी कर रही है। BBC समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समयानुसार हर दिन की तरह शाम 7:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए अनुमति, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com हमेशा आपके साथ है। नमस्कार।